खुदावन यीशु मसीह का वादा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए हम खुदावन खुदा के जुड़ चुके और दुआ करें ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का, रहनमाई का, हौसला अफजाई का और रूहानी रहनमाई का वसीला ठहरे। हम सब दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज की शाम खुदा खुदा तमाम खानदान के जो कलीसिया की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। खुदा हम सब तेरे शिनवा होने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे दिलों की आंखों को रोशन करना और खुदा खुदा हमारे कानों को खुदा खुदा छूना और खुदा खुदा मेरे लबों का रखवाला बनना, ताकि खुदावंद जो बात, जो बयान, जो सच खुदा खुदा तेरे कलाम अक्दस में से तेरे लोगों की रूहानी तरक्की और तमीर के लिए बोला जाए, किया जाए, भाई से बरकत हो और आज की शाम खुदा खुदा एक जिंदगी बरकत पाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में ही दुआ मांगता हूँ,
आमीन।
यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां दीजिए। आपको पता कि आपकी बाइबल में बहुत से मौजजात हैं। अगर पुराने अहदनामा में देखें तो हमें बहुत से मौजजात मिलते हैं, नए अहदनामा में देखें तो बहुत से मौजजात मिलते हैं, और अगर उनकी लिस्ट बनाना शुरू करें तो कुल मिलाकर आपकी बाइबल में जो मौजजात, यानी कि मौसमों पर इख्तियार रखने के तलक से, बीमारों को शिफा देने के तलक से, खुदावंद की अलाही फरावानी यानी कि वो लोगों के लिए इंतजाम करता हुआ आसमान से, जमीन से पैदावार और ऐसे करामात जिसमें खुदा हफाजत करता है, निगाहबानी करता है, अपना हाथ बढ़ाता है और उसके साथ मुर्दों में से जिंदा करने के तलक से, इन सारे मौजजात को मिलाया जाए तो टोटल 264 मौजजात बनते हैं। कितने मौजजात हैं ये आपकी बाइबल मुकद्दस में? 264 जो गिने जा सकते हैं। क्योंकि जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यूहन्ना की इंजील में ये वो मौजजात हैं जो लिखे गए हैं और बहुत से हैं नहीं लिखे गए। अगर तमाम मौजजात और वाकयात लिखे जाते तो इस दुनिया में किताबों को रखने की जगह मुमकिन होती ना, जगह रखने के लिए गुंजाइश ना होती। तो 264 मौजजात जो हम गिन सकते हैं, अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं और अपने मुंह से उनका इकरार कर सकते हैं और उनको बाइबल में तलाश कर सकते हैं। तो आज की शाम मैं चाहता हूं कि हम एक मौजजे पर गौर करें जो हमें नए अहदनामा में मिलेगा। नए अहदनामा में मिलेगा अगर आप मेरे साथ निकालें लूका की इंजील उसका 17वां बाब, उसकी हम 11वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ेंगे और यहां पर खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये मौजूदा 10 कोड़ियों की शिफा और मौजूदाना कुदरत के तलक से है कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने कहने से उनको शिफा दी। और जब यहां पर पढ़ते हैं तो लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख करके मैं शिफा पा गया हूं, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिर कर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। अगर हम मौजजात को गिनना शुरू करें तो मैंने आपको नंबर बताया 264 मौजजात जिनको हम गिन सकते हैं। इसी तरह अगर हम गीतों को गिने तो बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से गीतों का जिक्र मिलता है, जिसमें मूसा का गीत है, मरियम का गीत है, फरिश्तों का गीत है, उसके बाद हम देखते हैं अय्यूब का गीत है, इब्राहिम का गीत है, इसहाक का गीत है, और फिर उसमें देखते हैं एलिशबा का गीत है, मरियम का गीत है, फरिश्तगान का गीत है, और यीशु मसीह का गीत जो उसने अपने शिगिर्दों के साथ जैतून के पहाड़ पर गाया। सो हमें बहुत से गीत, बहुत सी गजलें, बहुत से क्या है जी मजामीर बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, और इस हवाले में भी हमें एक गीत मिलता है और वो क्या है जी तमजीद का गीत है। इसलिए मैं चाहता हूं इस बात पर गौर करें कि हैरानगी की बात है कि यीशु मसीह को जब हम देखते हैं वो किसी भी काम में देरी नहीं करता, उसका हर एक काम क्या है जी वक्त पर है। इंसान होते हुए हम सोचते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं उसके लिए देर हो चुकी है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे हाथ से वक्त निकल रहा है, और हम इंसान होते हुए उसे सोचते हैं कि वक्त नहीं है, शायद अभी मेरी क्या है जी जरूरत पूरी नहीं हो रही, इसलिए खुदा मेरे वक्त को समझ नहीं रहा। लेकिन यीशु के जब हम निज़ाम को देखते हैं तो उसकी खिदमत के तलक से वो हर जगह पर वक्त पर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर जब हम पहली आयत देखते हैं तो बड़ी ही यहाँ पर सीखने वाली बात है। ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील से गलील के बीच में होकर जा रहा था। इन दोनों शहरों को देखते हैं कि वो सामरिया से और गलील से जब यरूशलेम में खिदमत कर रहा है उसे जाना जरूर था। आपको याद होगा कि एक सामरी औरत को जब हम पढ़ते हैं उसका वाक्या जो कुएं पर यीशु मसीह को मिली तो उसके लिए क्या लिखा है, यीशु ने कहा कि उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। उसके लिए वक्त था कि उस जगह पर वो उस राइट वक्त पर क्या मिलेगा, उस सामरी औरत से मिलेगा, ताकि वो सामरी औरत क्या करे, सच को सुने, निजात के बारे में जाने, परखे और कहे कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, जिसका मतलब है वो मसीह जो आने वाला था। और वो जाकर अपने गांव के सारे लोगों को बताती है, मुझे एक नबी मिल गया है जिसने मेरा सब कुछ मुझे बयान कर दिया। एक और वाक्य देखते हैं अन्ने बर्तलमाई को, वो अंधे बर्तलमाई को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह को यरहू में जाना जरूर था। आने वाले 19वें बाब में हम देखेंगे वहां पर शहर के बाहर दो अंधे बैठे हैं और वो यीशु की जब वाह वाह को सुनते हैं, उसके कामों को सुनते हैं, बड़ी भीड़ उसके पीछे है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं यीशु यीशु इब्ने दाऊद हम पर रहम करो, शागिर्द उनको चुप करवाते हैं और यीशु कहता है नहीं नहीं इनको मेरे पास लेकर आओ, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। उन दोनों को शफा देते हुए यीशु मसीह आगे यरहू में जाता है, लिखा है उसे यरहू से जाकर जाना होकर जाना जरूर था। और वहां पर क्या देखते हैं जकई नाम शख्स को, जकई का मतलब है पाक साफ, बेऐब, और जब उसकी जिंदगी पर निगाह करते हैं वो क्या है जी ऐबों से और क्या है जी हर तरह के उस फरार से भरी हुई है, लोगों की नजर में वो क्या है जी दूना लेता है, चौथना लेता है, वो मसूल का जो काम करता है। और वहां पर लिखा है कि यीशु को यरूशलेम से जाना जरूर था, किसके लिए, जिक्रिया के लिए। मैंने जकई कहा कि जिक्रिया कहा, जकई जिक्रिया पुराने नामों में जिक्रिया यूहन्ना का बाप है, जकई उसका नाम है, जकई 19वें बाप में। तो जकई का मतलब है पाक बेऐब। उसकी जिंदगी को देखते हैं लोग कहते हैं ये तो उस घर के उसके गांव घर में क्या है उतरा है और वो तो क्या है जी नापाक है, बुड़बुड़ाते हैं कि वो उस गुनाह घर के घर चला गया और यीशु कहता है आज इस घर में निजात आई है। सो यीशु मसीह को यहां पर देखते हैं उससे इस शहर से होकर जाना जरूर है, और जैसे ही वो गुजरा है तो क्या हुआ, और गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले, 10 कोड़ी उसको मिलते हैं तो वो दूर खड़े होकर कहते हैं इब्ने दाऊद ए यीशु क्या कर हम पर रहम कर, ए यीशु ए साहब हम पर रहम कर। पुराने अहदनामा के मुताबिक जब गिनती 5 बार को देखते हैं तो कोड़ियों के लिए हुक्म था, शरीयत थी कि वो क्या रहे जी शहर से बाहर रहे, वो शहर में आ नहीं सकते थे, उनको हुक्म नहीं था, लिखा था कि किसी को जरियान की बीमारी या किसी ने किसी मुर्दे को छू लिया हो तो या किसी को कोढ़ हो तो वो खुदा के उस लश्कर गाह में दाखिल ना हो, वो बाहर रहे, क्योंकि वो नापाक गिना जाता था। सो कोढ़ी शहर के बाहर रहते थे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु को दूर से खड़े होकर कहते हैं, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। और इससे हमें पता चलता है कि कोढ़ियों को जब देखते हैं उनके कोढ़ के बायस उनके जो बदन के ऊपर क्या है जी, मुख्तलिफ किस्म की टाकियां जिसे कहते हैं रैप किया होता था, पट्टियां की होती थी ताकि उनके जो नासूर हैं, जो जख्म हैं, उनमें कीड़े या मच्छर या मक्खियां या कोई और जानवर उनको खाए ना, तो इसलिए उनकी हालत जो है दूर ही से पता चल जाती थी कि ये कोढ़ी है, ये नापाक बंदा है। तो वो दूर खड़े होकर यीशु को कहते हैं, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। और यीशु मसीह उनको क्या कहता है, जाओ जाकर अपने तई काहिनों को दिखाओ। हमें बाइबल मुकदस में बहुत से मोजज़ात मिलते हैं जिसमें यीशु मसीह को देखते हैं अंधे बर्तिमाई को, जन्म के अंधे को, और दूसरों को यीशु कहता है जाकर ये करो, जाओ ये करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अंधे बर्तिमाई के लिए देखते हैं यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई, जमीन पर थूका, उसे गूंदा और उसकी आंखों पर लगा दिया और उसकी क्या होगी जी, अंधापन उसका जाता रहा। 38 बरस के बीमार को देखते हैं वो पानी पर बैठे इंतजार कर रहा है कि कब फरिश्ता आए, कब कोई उसे उसमें उतारे और वो शिफा पाए। यीशु से कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यहां पर इनको कुछ भी करने को नहीं कहा सवा इसके, मां सवा इसके कि जाओ जाकर काहिनों को दिखाओ। और वो इस बात पर कोढ़ियों के ईमान को देखते हैं कि वो इस बात पर यकीन करते हैं कि हमें खुदावंद खुदा ने कुछ कहा है और वो उसकी बात का यकीन करके चल पड़ते हैं। और आगे लिखा है कि जैसे वो जाते जाते पाक साफ हो गए, 10 के 10 शिफा पा गए, 10 के 10 रहाई पा गए, 10 के 10 ईमान लाए, 10 के 10 जा रहे हैं, 10 को शिफा होगी। लेकिन सवाल उठता है कि 9 का क्या बना, उन 9 ने क्यों आकर दोबारा खबर ना दी, उन 9 ने आकर क्यों तमजीद का गीत नहीं गाया जैसे इसमें लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। फिर उनमें से एक ये देख कर के मैं शफा पा गया हूं बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। उसने अपनी तमजीद का, खुदावंद की शुक्रगुजारी का गीत गाते हुए वापस लौटा है और कहता है खुदावंद की तमजीद हो जिसने मुझे शिफा दी है। इन 10 को देखते हैं, 10 में से 9 का पता नहीं उनका क्या बना, वो कहां पर गए, उनका क्या हाल हुआ, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्यों उनके बारे में नहीं लिखा गया। लेकिन जो हमारे लिए सबक सीखने वाली बात है, जब हम यीशु की मौजूदाना गवाही को दबाएंगे कि यीशु ने मेरे लिए काम किया है, तो यीशु भी हमारे लिए क्या कहेगा, अगर इसने मेरा इकरार नहीं किया तो मैं भी इसके लिए अपना इजहार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने क्या किया, यहां पर जो 10वें को देखते हैं वो शिफा पा गया और उससे सवाल करता है कि बाकी 9 का क्या बना, बाकी 9 का क्या बना। मैं आज सोच रहा था इस बात पर, हो सकता है कि एक का लिखा गया है क्या है जी, वो सामरी था और बाकी कौन थे, क्या वो यहूदी थे, क्या वो कनानी थे, क्या वो किसी गैर कौम से थे, क्या मसला था कि वो 9, उनके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं मिलती लेकिन 10वें के बारे में लिखा है और वो शुक्र करने लगा और वो सामरी था। सामरी नस्ल को जब देखते हैं कि गैर कौमों के साथ, सामरियों के साथ जब यहूदियों ने आपस में शादियां की तो उनसे सामरी नस्ल पैदा हुई, जो क्या थे जी, यहूदी सामरियों को क्या समझते थे, नीचा समझते थे, उनको रूहानी तौर पर उस मियार पर नहीं देखते थे, उनको बहुत कम इजाजत थी कि वो हैकल में और दूसरी ईदों में शामिल होते। आपको याद होगा कि सामरिया शहर में जब यीशु मसीह गया तो उन्होंने कहा तू यहूदी हो के मुझसे पानी क्यों मांगता है, यहूदी तो हमसे कोई तल्लक नहीं रखते। लेकिन सामरियों के बारे में जो बात हमें सीखने को मिलती है, हमें बहुत से वाक्यात मिलते लेकिन हम 3 पर गौर करेंगे। سامریوں کے تعلق سے. یہ سامری تھا اور اس کے بعد پھر اس گاؤں میں جو سامریا کا گاؤں تھا, کنویں پر بیٹھی ہوئی عورت کون تھی؟ سی سامری تھی. جب یسو نے اس کا بھید, یسو نے جب اس کا وہ درد, یسو مسیح نے جب اس کے بارے میں سچ بتا دیا, تو وہ کیا کرتی ہے؟ جا کر سارے گاؤں کو بیان کرتی ہے کہ مجھے وہ نبی مل گیا ہے جس نے میرے سارا کچھ مجھے بتا دیا. یوحنا 4:4 میں وہ سامری عورت کیا ہے جی, وہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہ جاتی, وہ کہتی مجھے خرسطس مل گیا ہے, وہ نبی مل گیا ہے جس نے میرا سب کچھ مجھے بتا دیا, اور وہ شہر میں جا کر بیان کرتی ہے, اور اس کی گواہی سے یسو وہاں پر کچھ اور دن ٹھہرتا ہے اور وہاں پر تعلیم دیتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس سامری کو, اس سامری سے کیا ہے جی, خداوند کی تعریف ہوتی ہے. یہ سامری گواہی دیتا ہے. اور ایک اور نیک سامری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, یسوع مسیح وہاں پر بیان کر رہا ہے اس شرع کے عالم کو, وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. یسوع مسیح نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ, اور وہ کہتا ہے میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے اسے واقعہ سنایا کہ ایک بندہ سامری کیا تھا جی, ڈاکوؤں میں, ایک بندہ راستے سے یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا اور ڈاکوؤں میں گر گیا, اور انہوں نے اسے مارا پیٹا, ادموا چھوڑ کر چلے گئے اور سب اس کا مال لے گئے. سو وہاں پر ایک لاوی آتا ہے, وہ اسے دیکھ کر اپنا راہ کترا کر چلا جاتا ہے. وہاں پر ایک کاہن آتا ہے, وہ بھی اسے دیکھ کر اپنا راہ کترا کر اور راستہ بدل کر چلا جاتا ہے. اور وہاں پر ایک سامری آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اس ادموے کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے, اپنے گدھے پر بٹھاتا ہے, اس کے زخموں پر میل لگاتا ہے, اسے بٹیارے کے پاس لے کر جاتا ہے, اپنے پاکٹ سے پیسے دیتا ہے, سب کچھ کر کے اسے کہتا ہے میں واپس آؤں گا, جتنا تیرا خرچ آئے گا میں واپس کروں گا. ان تینوں سامریوں کو دیکھتے ہیں, وہ تینوں کیا ہیں جی؟ گواہی ہیں ہم سب کے لیے. لیکن میں اکثر اس پر سوچتا ہوں کہ یہ نو کون تھے؟ کیا یہودی تھے؟ کون تھے یہ جنہوں نے اتنا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے زندگی کے روگ کو, کہ وہ عبادت نہیں کر سکتے, وہ خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے, اس کوڑ کی بیماری کے باعث وہ اپنے خاندانوں سے دور ہیں, اپنے رشتہ داروں سے مل نہیں سکتے, عید میں نہیں جا سکتے, باوجود اتنی پابندیوں کے, اتنی دوریوں کے, جدائیوں کے, کہ وہ نہ ہیکل میں جا سکتے ہیں, نہ رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں, نہ عید میں داخل ہو سکتے ہیں, نہ کوئی قربانی کر سکتے ہیں, نہ کوئی عبادت اور پرستش کے پروگرام میں داخل ہو سکتے ہیں, نہ شہر میں بغیر یہ اعلان کیے داخل ہو سکتے ہیں کہ ناپاک ناپاک ان کے ہاتھ میں گھنٹی ہوتی تھی لوگوں کو بتانے کے لیے. اتنی تمام باتوں کے باوجود جب ان کے لیے معجزہ ہوا, وہ کیوں واپس نہیں لوٹے؟ کیوں انہوں نے گواہی نہیں دی؟ شاید آپ بھی ایسا سوچتے ہو کہ کیا ہوا, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ ایک دن آئے گا جب ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں ہوں گے, اس سے پوچھیں گے, اس سامری سے پوچھیں گے کہ ان نو کا کیا بنا, اور خدا کے حضور ان سوالوں کا جواب ملے گا جن کا جواب آج ہمیں نہیں پتا. لیکن میری جو اس کے اوپر سوچ ہے وہ یہ ہے, شاید ان نو کے دل میں کیا ہو, شرمندگی ہو یا شرم ہو یا خوف ہو کہ ہم کیسے جا کر کاہنوں کو دکھائیں, کیونکہ یہ سامری کیا ہے, جاتا ہے شرمندگی, کیونکہ بہت دفعہ کوڑی کیا کرتے تھے, اپنے کوڑ کو چھپاتے تھے, کوڑ کو چھپاتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے, کہ وہ تمام سوسائٹی سے الگ نہ کر دیا جائے. آپ کو یاد ہے وہ 12 سے بیمار عورت, جب اس کے واقعہ کو پڑھتے ہیں, وہ کسی بھی عید, کسی بھی عبادت, کسی بھی کام میں داخل نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ان کو سوسائٹی سے, جسے کہتے ہیں حکا پانی, بند کر دیا جاتا تھا ان کی ناپاکی کی وجہ سے. سو یہ نو نہیں آئے, اور اس سے جو ہمارے لیے سیکھنے کو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے, ہمیں نو کوڑیوں کی طرح نہیں بننا, بلکہ ایک کوڑی جو سامریوں کی نمائندگی کرتا ہے کیا کرنا چاہیے, आवाज लगा के नारा लगा के प्रस्तुति और हमद का गीत गाते हुए कहना चाहिए, खुदावंद खुदा ने मेरे लिए ये काम किए हैं। खुदावंद की तारीफ हो। आपको पता है मरियम ने गीत गाया था, मैं मरियम मूसा की बहन की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ देखे पुराने अहदनामा में, मरियम ने जब नाफरमानी की और उसने मूसा के खिलाफ जुबान चलाई, खुदा के चुने हुए बंदा नबी मूसा के खिलाफ जब उसने बात की तो उसे क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था, कोढ़ हो गया था। जब आप देखते हैं गिनती की खरूज की किताब उसका 15वां बाब जब हम उसकी 19वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर मरियम ने गीत गाते हुए क्या किया है जी? खुदावंद की तारीफ की है, खुदावंद की तारीफ की है। इस गीत का सबब यह था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और खुदावंद समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इसराइल समंदर में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और हारून की बहन मरियम जो नबिया थी दफ हाथ में लिए और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके साथ क्या उसके पीछे क्या करती हैं जी? चलती हैं। और मरियम ने क्या गाया जी? उनके और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती है, खुदावंद की हमद गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतेह मंद हुआ, उसने घोड़ों को उसके सवारों समेत समंदर में डाल दिया। मरियम ने क्या किया जी? खुदावंद की तारीफ की है, शुक्रगुजारी की है, फतेह का गीत गाया है। हम भी क्या करें जी? मरियम की तरह, इस सामरी कोड़ी की तरह क्या करें? खुदावंद की तारीफ हो, तूने मेरे लिए अजीब अजीब काम किए हैं। हमें इससे जो 10 कोड़ियों की मिसाल या वाक्या या मौजजा जिसे हम कहते हैं सबक जो सीखने को मिलता है, 9 कोड़ी ना बने बल्कि 10 कोड़ियों में से 1/10 कोड़ी बने, जिसने तमजीद की, जिसने क्या की? खुदावंद की तारीफ की, उसे सजदा किया और यसु मसीह का उसने इनकार किया, इकरार किया और यसु मसीह ने उसका इकरार करते हुए क्या कहा? जा उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो यसु मसीह एक और जो सबक हमारे लिए यहाँ पर है, यसु मसीह सिर्फ हमें जिस्मानी कोर से शफा नहीं देता, उसने क्या किया है? उसने हमारी जिंदगी में जो गुनाह का कोर था, जैसे जिस्मानी कोड़ी ना शहर में जा सकता था, ना हैकल में जा सकता था, ना खुदा की हुजूरी में जा सकता था, ना खुदा के लोगों से मिल सकता था, ना ही किसी बरकात को पा सकता था, ना ही किसी इबादत में शामिल हो सकता था और ना ही किसी और के साथ कोई तल्लक रख सकता था, वो मुकम्मल तौर पर क्या था जी? तमाम उस जिंदगी की नेमतों बरकतों इबादतों नेमतों से क्या था जी? काट दिया गया था, उसका हुक्का पानी बंद था। यह है जिस्मानी कोर की वजह। रूहानी कोर ने क्या किया? हम खुदा से दूर थे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है मेरे साथ देखें, इफिसियों 2 बाब जब हम देखते हैं उसकी 15, 16, 17 आयत को, तो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल इस गुनाह के कोर की बात करता है जो जुदाई इंसान के और खुदा के दरमियान थी। जब हम पढ़ते हैं 15वीं आयत से, मैं आपके लिए 12वीं आयत से पढ़ दूंगा, 11वीं आयत से, पस याद करो कि तुम जो जिस्म के रौह से गैर कौम वाले हो और वो जो जिस्म में हाथ के किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं तुमको ना मख्तून कहते हैं। यहूदियों में ये बहुत बड़ी जंग थी, ये बहुत बड़ा फसाद था कि मख्तूनों और ना मख्तूनों, गैर कौम और यहूदियों के दरमियान क्या था जी? इबादत में झगड़ा होता था कि तुम्हें खुदा ने कोई बरकत के लिए नहीं बुलाया, हम मख्तून हैं, हम खुदा के और बेटे और फरजंद की क्या है? इब्राहिम की नस्ल है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की तमाम इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के अहदों से ना वाकिफ और ना अमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। ये एक रूहानी कोड़ी की क्या है जी? हालत है कि वो खुदा से, उसके वादों से, उसके अहदों से, हर एक बात से क्या था जी? जुदा था। मगर तुम जो पहले दूर थे, जैसे कोड़ी शहर के बाहर होते थे, वैसे ही रूहानी तौर पर हम सब क्या थे जी, गुनाह के कोड़ और बीमारी के बायस यीशु से, खुदा से दूर थे। अब यीशु मसीह में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थे ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों को अपने आप में नया इंसान बनाकर सुलह करवा दे। जब कोड़ी साफ होते थे तो उनका बदन ऐसे हो जाता था जैसे नए बच्चे की स्किन हो। याद होगा नमान कोड़ी को जब सात गोते लगाने को कहा तो उसके जब सातवां गोता लगाया, पानी से बाहर आया तो उसका बदन क्या हो गया था, बिल्कुल साफ शफाफ हो चुका था, उसका कोड़ जाता रहा। वैसे ही जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा उसके खून में छुप जाते हैं, उसके कफारे को कबूल करते हैं, खुदा हमारी गुनाह आलूदा तमाम फितरत को क्या करता है, नई फितरत दे देता है, हमें पुराने आदम से निकाल कर नए आदम में मसीह में क्या बना देता है, नई मखलूक बना देता है। और हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान जो जुदाई जो कोड़ वो गुनाह जो गुनाह जुदाई का बायस होता है वो क्या कर देता है, खुदा ख़त्म कर देता है। तो इस 10 कोड़ियों के वाक्या में से हम वो क्या है जी सबक सीखते हैं, रूहानी तौर पर हमारे कोड़ को यीशु ने साफ और पाक किया ताकि हम खुदा की हजूरी में जा सके। दो बाप उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं, तो और यीशु के वसीला से हम सबको क्या है जी, खुदा तक जाने की रसाई हासिल हुई। 3:18 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी और यीशु मसीह के वसीला से खुदा में रूह में हम सबको खुदा के पास जाने का मौका मिला। अब्रानियों 4 उसकी जब हम 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है और उसने हम सबको ऐसा शरफ बख्शा कि हम बड़ी दलेरी से खुदा के फजल के तख्त के सामने जा सकते हैं ताकि हमारी मदद हो। और वो बात पूरी हो जाती है, यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना 14:6 में सब मिलकर कहेंगे, ये सबको आती है। यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं, कोई भी गुनाह का कोड़ी हो, कोई भी जो गुमराह हो, उन सब के जाने के लिए मैंने रास्ता क्या कर दिया है जी, तैयार कर दिया है, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए हमें उसकी गवाही को दबाना नहीं है, हमें उसकी गवाही से शर्माना नहीं है, हमने उसकी गवाही का इनकार नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इकरार करना है और मरियम की तरह गीत गाना है, मूसा की तरह गीत गाना है और खुदावन खुदा के नाम को क्या करना है जी, बुलंद व बाला करना है कि वो हमारी शिफा है, वो हमारी रहाई का वसीला है, उसी के नाम से हमारी पहचान और शान है और वो ही हमारी आन है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने हमें ना सिर्फ जिस्मानी कोर से बल्कि रूहानी कोर से भी क्या करता है जी, साफ और पाक करता है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। इस बात के लिए क्या होना चाहिए, जोरदार यीशु के लिए ताली होनी चाहिए। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और दुआ करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से एक एक जिंदगी को बरकत दे, हम 9 कोड़ियों की तरह नहीं बल्कि उस 10वें सामरी कोड़ी की तरह खुदा खुदा तेरे आगे झुकें, तेरी प्रस्तुति करें, तेरी गवाही दें और जैसे तूने कहा जा उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, इस सामरी ने जाकर सबको बताया होगा कि मुझे यीशु ने शिफा दी है। खुदा बाप हम भी लोगों को तेरा चर्चा करके बताएं कि तूने हमें शिफा दी है, तूने हमें गुनाहों की मंडी से खरीद कर हमारे कोड़ को धोकर पाक और साफ किया है ताकि हम नए इंसान बन सकें। खुदावंद आज की शाम सब कुछ बड़ी बरकत दे, सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।